कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन यमुना जमुना तीरावन चारे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारि यमुना जमुना तीरावन चारि राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोद ಆನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜನನ ಪ್ರಿಯವನ ಚಾರಿಯಮುನ ಜನನ ಪ್ರಿಯವನ ಚಾರಿ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಸುಭದ್ರಾ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರಾಜಕಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿವಿಟಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಕಿ ಜಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ್ವ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಭಾಗವತ್ ಸಾರ ಕಿ ಶೃಂಖಲಾ ಆಠವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ ಹೈ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ. ತೋ ಇಸ್ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಕಿ ಪಹಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋ ಪಢೆಂಗೆ, ದೊಹರಾಯಿಯೆ ಕೃಪಯಾ. ಓಂ ಹರಿರ್ವೇದ್ಯಾನಮಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಾಂ ಘ್ರಿಪದ್ಮಂ ಪದಗೇಂದ್ರ ಪೃಷ್ಠೇ ದರಾರಿ ಚರ್ಮಾಸಿ ಗದೇಶು ಚಾಪ ಪಾಶಾಂ ದಧಾನೋಷ್ಟ ಗುಣೋಷ್ಟು ಬಾಹು ಓಂ ಹರಿರ್ವೇದ್ಯಾನ್ ಮಮ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಾಂ ಘ್ರಿ ಪದ್ಮಂ ಪತಗೇಂದ್ರ ಪೃಷ್ಠೇ ದರಾರಿ ಚರ್ಮಾಸಿ ಗದೇಶು ಚಾಪ पाशांग धानोष्ट गुणोष्ट बाहु ओम हरिर्वे ध्यान मम सर्वरक्षा न्यस्तांग्रि पद्मं पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशांग धानोष्ट गुणोष्ट बाहु से सुरक्षा न्यस्त रखा हुआ आंग्री पद्म जिनके चरण कमल पतगेंद्र पृष्ठे समस्त पक्षियों के राजा गरुड़ की पीठ पर दर शंख अरि चक्र चर्म ढाल असी तलवार गदा गदा इशु तीर चाप धनुष पाशां पाश या फंदा दधान ग्रहण किए हुए अष्ट आठ गुण सिद्धियों से युक्त अष्ट आठ बाहु भुजाएं। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। परमेश्वर पक्षी राज गरुड़ की पीठ पर आसीन हैं और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष तथा पाश धारण किए हैं। ऐसे आठ भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे शक्तिमान हैं क्योंकि वे आठ योग शक्तियों अणिमा लघिमा इत्यादि से समन्वित हैं। तात्पर्य, ईश्वर से तादात्म्य का चिंतन अहम ग्रहोपासना कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किंतु गुणों की दृष्टि से वह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा का धर्मासम है। उसे इस श्लोक में बताई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्माएं सदैव परमेश्वर के अधीन हैं, फलतः उनका कर्तव्य है कि सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से कृपा याचना करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिका कान्तराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। कृपया सब साथ में जोर से कहें।
सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेमनारुत्कण्ठयोस्पुरा।
हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में चर्चा हुई कि किस तरह देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें विश्वरूप के पास जाने के लिए कहा। देवताओं ने अपराध किया था और जिस अपराध के चलते वैष्णव अपराध के चलते वे हार गए असुरों से, और फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उनसे विश्वरूप को अपना गुरु बनाने के लिए कहा। तो कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे जब व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है कृपा चली जाती है और फिर आक्रमण होता है, और जब व्यक्ति को पर आक्रमण हो भौतिक इच्छाओं का तो फिर उसे शरण लेनी चाहिए वरिष्ठों की, शास्त्रों की, और जो उसे मार्ग निर्देशन दें एक गुरु को स्वीकार करने के लिए। गुरु को स्वीकार करने के बाद भी जब ये स्थिति हो तो पुनः गुरु को समर्पण करने की आवश्यकता है। अर्थात ये जान लीजिए कि जब हम किसी गुरु को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बाद हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं सताएगी, आक्रमण नहीं होगा। हमारे जीवन में हमें एक बार गुरु को समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है जीवन में हर रोज हर क्षण गुरु को समर्पण करने की। क्योंकि समर्पण ये कोई एक समय का कार्य नहीं है, ये विधि है और इसको हर रोज हर क्षण करना चाहिए। जो व्यक्ति हर रोज हर क्षण अपने गुरु को समर्पण करता है वो सारे कष्टों से सारे आक्रमणों से बच सकता है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु को स्वीकारो। तो ये जानना चाहिए कि गुरु को समर्पण हम व्यक्ति एक बार केवल दीक्षा हो गई तो हमने दीक्षा के समय गुरु के सामने प्रणाम किया, वचन ले लिए, बस खत्म नहीं। दीक्षा का मतलब है प्रारंभ। किस चीज का प्रारंभ? गुरु को सतत समर्पण करने का प्रारंभ, कि अब से हर क्षण, जैसे अब हमने दीक्षा के समय गुरु को समर्पण किया, गुरु ने स्वीकार किया हमें, हर क्षण हम गुरु को और कृष्ण को समर्पण करेंगे, ये दीक्षा का अर्थ है। तो इसीलिए जब तक हम ये कार्य करते रहेंगे कि हर क्षण हमारा जीवन का गुरु को समर्पण हो, समर्पित हो, तब हम आक्रमणों से बचे रहेंगे। तो इसी तरह ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ विश्वरूप को आप स्वीकारो, गुरु स्वीकारो। तो उस समय फिर देवताओं ने विश्वरूप से कहा, उनके पुरोहित बने विश्वरूप, और उन्होंने नारायण कवच उन्हें दिया। तो अब इस अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि वो नारायण कवच क्या है, वो बताइए, जिससे देवता सुरक्षित हो गए। तो अब इस अध्याय में नारायण कवच का वर्णन है। तो पहले 11 श्लोकों में, ये श्लोक हमने जो पढ़ा इसके पहले, ये भूमिका है कि कैसे नारायण कवच के लिए तैयारी की गई, आचमन इत्यादि करना, या क्या है नारायण कवच, उसको थोड़ा सा उन्होंने बताया। जो नारायण कवच बोलने से पहले प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं उनको किया, और फिर 12वें श्लोक से, जैसे अब हमने ये वाला श्लोक पढ़ा, इससे नारायण कवच प्रारंभ हुआ। तो नारायण कवच क्या है? ये एक कवच है। कवच मतलब हमारी रक्षा करने वाला एक साधन। जब युद्ध में जाया जाता है तो युद्ध में कवच पहन के जाते हैं ताकि शत्रु के जो बाण हैं वो लगे नहीं, अगर लगे भी शरीर पर तो वो अंदर नहीं जाएं, प्रवेश नहीं करें। इसी तरह ये नारायण कवच ये मंत्रों का कवच है। ये कवच कोई लोहे का बना नहीं है, मंत्रों का है। और किस लिए है मंत्रों का कवच? हमें मंत्र का कवच क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि जब मंत्र का कवच हम पहनते हैं तो जैसे एक योद्धा वो जाता है युद्ध भूमि में कवच पहने हुए, उसको बहुत से तीर लगते हैं लेकिन उसका हृदय विदीर्ण नहीं होता, हृदय में वो कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात वो मरता नहीं है। उसके शरीर को थोड़ी बहुत क्षति पहुंच सकती है लेकिन उसके हृदय में तीर प्रवेश नहीं करता। इसी तरह जब हम लोग मंत्र का कवच पहनकर बाहर जाते हैं माया की नगरी में माया से युद्ध करने के लिए, उस समय जो आक्रमण होते हैं हमें हमारे ऊपर, हमारा शरीर अर्थात बाहरी तौर से हम क्षति हो सकती है लेकिन हृदय में जो कृष्ण भक्ति है उसका नाश नहीं होता। तो इसीलिए ये मंत्र कवच भी बहुत आवश्यक है हम सबके लिए, जिससे हम लोग भगवान की अपनी भक्ति, भगवान का प्रेम जो हृदय में, उसको बनाए रखें। अर्थात जब हम उस प्रेम को पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई ऐसा तीर हमारे हृदय में प्रवेश ना कर जाए जिससे हम कृष्ण भक्ति के उस जीवन को समाप्त कर दें। इसीलिए बहुत आवश्यक है ये मंत्रों का कवच। तो युद्ध में योद्धा के लिए लोहे का कवच अस्त्र शस्त्रों से उसकी रक्षा करता है, और एक आध्यात्मिक योद्धा के लिए अर्थात वो योद्धा जो चेतना की स्थली पर युद्ध कर रहा है, चेतना की स्थली पर अपनी इच्छाओं से, अपने भोग प्रवृत्ति से जो युद्ध कर रहा है, उसके लिए मंत्र का कवच आवश्यक है। और इसीलिए हमारी संस्था में हम लोग रोज सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हैं, ये हमारे लिए कवच है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको पहनकर जब हम माया नगरी में भगवान की भक्ति करने के लिए माया से युद्ध करते हैं तो जो माया के प्रभाव हैं वो केवल बाहरी तौर पर रह जाते हैं, हृदय में प्रवेश नहीं करते। इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति माया के उन अस्त्रों को देखता है लेकिन देखकर प्रभावित नहीं होता। तो इस दृष्टि से मंत्र का कवच है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा और पहले 11 श्लोकों में वर्णन करना प्रारंभ किया। विश्वरूप कहते हैं कि जब भी किसी को भय हो बहुत ज़्यादा तो ये कवच उसको धारण करना चाहिए, लेकिन उससे पहले व्यक्ति को आचमन करना चाहिए। तो वो प्रारंभ करते, प्रारंभिक क्रियाएं शुद्ध करना चाहिए आचमन के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा। हमारी संस्था में या वैदिक शास्त्रों में कुछ मंत्र दिए गए हैं शुद्धिकरण के। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य अभ्यंतर शुचि ही। ये मंत्र बोला जाता है भगवान के विग्रह सेवा के पहले भी, आवश्यक है बोलना। तो इसके द्वारा हम लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा, अगर कोई व्यक्ति अपवित्र या पवित्र स्थिति में है, सर्वावस्थां गतोपि वा, किसी भी अवस्था से वो गुजरा हुआ क्यों ना हो, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है जिनके नेत्र कमल के समान है, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स, वो व्यक्ति बाह्य अभ्यंतर, बाहर से और अंदर से शुचि ही, शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग आचमन करना चाहिए, पहले भगवान का मंत्र बोलना चाहिए और फिर उसके बाद शुद्ध आचमन होना चाहिए। वैसे जो आचमन की विधि हम लोग पालन करते हैं, साधारणतः 3 बार लेकर करते हैं, वो बहुत छोटा शॉर्टकट है आचमन। वैसे पूर्ण आचमन होता है जो साधारणतः किया जाता है जहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से विग्रह सेवा हो रही है। तो उसमें वो बताते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए ओम नमो नारायणाय, या फिर आगे 12 शब्द बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ऐसे मंत्रों को लेते हुए वो अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हैं अपने हाथ से, जिसका प्रारंभ चरणों से होता है, पैरों से होता है, और फिर पैरों से लेकर घुटनों में, फिर जंघा पर, फिर उदर में, और फिर वक्षस्थल में या छाती में, और फिर मुख पर, और फिर सिर पर। तो ये पूर्ण आचमन विधि होती है, सब जगह को शुद्ध किया जाता है, सारे स्थानों को, और फिर उसके बाद कोई प्रक्रिया की जाती है। तो विश्वरूप ने उनसे ये आचमन करने को कहा। फिर जब उन्होंने सब आचमन इत्यादि कर लिया तब वो इस नारायण कवच को कहने लगे कि अब इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात अपने आप को शुद्ध करके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो फिर इस मंत्र से प्रारंभ करके वो आगे कई मंत्रों तक, प्रायः इस अध्याय के अंत तक, वे अलग अलग भाग कहते हैं इस नारायण कवच के। पहले कुछ मंत्रों को कहते हैं जिनमें भगवान के अलग अलग अवतारों से प्रार्थना की गई है कि आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये रक्षा कवच है इसीलिए सब मंत्रों के द्वारा हमारी रक्षा कीजिए। तो पहले कुछ अवतारों को वर्णन किया, मत्स्य अवतार से प्रारंभ करके किए करे वर्णन, फिर उसके बाद भगवान की शक्तियों से वर्णन किया गया कि भगवान के जो अलग अलग शक्तियां हैं, भगवान के जो आयुध हैं उनसे वर्णन किया गया कि वे हमारी रक्षा करें। फिर अलग अलग समय, दिन के समय कौन रक्षा करें, दोपहर के समय कौन रक्षा करें, जैसे ये जो समय है ये अलग अलग भागों में बटा होता है। हम लोग तो केवल 12 घंटे सुबह 12 घंटे रात कह देते हैं, लेकिन ये अलग अलग समय में बटा होता है घटिकाओं में, 24 मिनट की एक घटिका होती है, तो ऐसे पूरा दिन और रात्रि बटे होते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान के अवतारों के नाम लेके, भगवान के रूप के नाम लेकर वर्णन किया गया कि वो हमारी रक्षा करें। और अंत में फिर इसका फल बताया गया कि ये जो नारायण कवच है इसको पहनने का क्या लाभ है, और अंतिम दो श्लोकों में, अंतिम श्लोक में श्रुति फल दिया गया कि इसको सुनने का क्या लाभ है। तो ऐसे ये नारायण कवच है। तो उन्होंने प्रारंभ किया कहना भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हुए, जैसे इस श्लोक के बाद से वो मत्स्य अवतार का वर्णन करेंगे कि मत्स्य अवतार जल में हमारी रक्षा करें, वामन अवतार पृथ्वी पर हमारी रक्षा करें, विश्व रूप आकाश में हमारी रक्षा करें। तो ऐसे अलग अलग अवतारों का स्मरण करते हुए ये नारायण कवच प्रारंभ होता है। तो बहुत सारे अवतारों का वर्णन है, जिनमें से कुछ अवतारों के विषय में प्रभुपाद तात्पर्य में थोड़ा बहुत लिखते हैं, तो उनको कहने का प्रयास करेंगे। वैसे अगर सारे अवतारों की कथा कहने लगे तो ये तो बहुत बड़ा केवल अवतारों की कथा हो जाएगी, और ये अवतारों की कथा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पहले स्कंद में तीसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण जो सभी कारणों के कारण हैं, तो उनके उस समय अवतारों, बहुत सारे अवतारों के उत्स हैं वो, तो ये सब दिया गया। एक अवतार का वर्णन करते हुए इस नारायण कवच प्रार्थना में कहा गया सनत कुमार जो भगवान के अवतार हैं, सनत कुमार अर्थात चार कुमार, ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, इनको ज्ञान की शक्ति प्रदान की है भगवान ने। तो सनत कुमारों से प्रार्थना करें, कर रहे हैं कि आप हमारी जो काम वासनाएं हैं उससे हमारी रक्षा कीजिए। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर किसी के हृदय में बहुत सी कामेच्छाएं हैं जो हमारे लिए बहुत घातक हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति में सबसे बड़ी दुविधा ये कामेच्छाएं हैं। तो अगर किसी के हृदय में कामेच्छाएं हैं, प्रभुपाद कहते हैं उनको सनत कुमारों की शरण लेनी चाहिए जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। सनत कुमार आप सब जानते हैं, उनका जन्म हुआ छोटे से बालक थे और ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि बहुत अच्छा है तुम लोग मेरे बड़े लायक पुत्र हो और जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और विवाह करो और संतान उत्पत्ति करो। तो चार कुमारों ने डांट दिया अपने पिता को जन्म लेते ही कि ये कोई जीवन का उद्देश्य है, विवाह करो संतान उत्पन्न करो, ये सब क्या बेकार में हमें किस जगह पे लगा रहे हैं, ये सब हम विवाह और वो तो बात छोड़ दीजिए, हम बड़े ही नहीं होंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो चारों कुमार इतने से बालक नग्न घूमते हैं हर जगह पर, बच्चा घूमता रहता है नग्न, किसी बड़ा अच्छा लगता है, उल्टा बच्चा कपड़ा पहन के अच्छा नहीं लगता है ना, नग्न घूमता अच्छा लगता है। तो ऐसे छोटे से बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं सब जगह, वैकुंठ भी चले गए थे जय विजय ने रोक दिया। है बहुत ज्ञानी, भगवान के ज्ञान के शक्त्यावेश अवतार हैं, लेकिन रहते ऐसे। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो कहते बड़े होने से इच्छाएं बढ़ जाती हैं, काम वासना, छोटे बच्चे को क्या काम वासना रहती है, उसको कुछ पता नहीं घूमता रहता है ऐसे, लेकिन जब बड़े हो जाएं तो वासनाएं बढ़ जाती, इसलिए उनका हम ऐसे ही रहेंगे। तो चार कुमार ऐसे रहे। प्रभुपाद कहते हैं कि जिन्हें काम वासनाएं बहुत सताती हैं उन्हें सनत कुमार जैसे ब्रह्मचारियों की शरण लेनी चाहिए कि वो हमें हमारी रक्षा करें इन काम वासनाओं से, क्योंकि काम वासनाएं ये हमारे लिए भक्ति मार्ग में बहुत खतरनाक हैं। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजेत, कि तीन चीजें जो नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और इच्छाएं या लोभ, तो ये तीनों हमारे लिए नरक का द्वार है, इसीलिए इनको त्यागना चाहिए। तो काम वासनाएं बहुत बड़ी बाधा हैं, इतनी बड़ी बाधा है कि ब्रह्मा जी भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी ने पुत्री को जन्म दिया उसी के पीछे भागने लगे, उस रूप के प्रति आकर्षित हो गए, भागने लगे उसके पीछे, और मरीचि इत्यादि उनके पुत्र वहाँ खड़े हैं। ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा जी अकेले थे कहीं जंगल में और भाग रहे कोई देख रहे, मरीचि इत्यादि उनके पुत्र, ब्रह्मा जी के खुद के पुत्र खड़े हैं और वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ये क्या कर रहे हैं, आप परम पिता हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आप प्रजापतियों के श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मा जी हैं, इस ब्रह्मांड के प्रमुख व्यक्ति, आपको ये नहीं शोभा देता। ब्रह्मा जी ने सुना ही नहीं, भाग रहे हैं पुत्री के पीछे। तो ये काम वासना कि जब ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान के गुण अवतार हैं, भगवान ने दर्शन उन्हें दिए हैं, तपस्या करने के बाद शक्ति प्रदान की भगवान ने स्वयं इस जगत की रचना करने के लिए, वो ब्रह्मा जी भी काम वासना के प्रभावित हो जाते, फिर हम लोगों का, फिर अगर हम लोगों के अंदर काम वासना आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। प्रभुपाद से एक बार उनके एक शिष्य ने कहा कि मेरे अंदर कोई काम वासना नहीं है। प्रभुपाद ने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, दिखाओ कोई तकलीफ है इसको, है ना, काम वासना नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं काम वासना से पूर्ण रूप से मुक्त हूं। एक बार हमने ऐसा भी सुना है कि किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद से, उनके एक शिष्य ने आकर कहा प्रभुपाद मुझे संन्यास लेना है। तो प्रभुपाद ने कहा क्यों लेना है, मेरे अंदर बहुत काम वासनाएं हैं। प्रभुपाद ने कहा ठीक है फिर तुम संन्यास ले लो। ताकि क्योंकि व्यक्ति अगर काम हो, बहुत सारी काम वासनाओं को लेके विवाहित जीवन में जाएगा तो निश्चित भक्ति तो नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा है संन्यास लेकर प्रयास करे या भक्ति ब्रह्मचारी रहकर। तो देखिए काम वासनाएं, ये बताया गया है कि किस तरह ये हमारे भक्ति के जीवन को नाश कर देती हैं। व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है, किसी सुंदर रूप को देख लेता है, बस उसको लगता है यही मेरा जीवन है, और फिर आजकल बाहर का प्रभाव इतना है, आप लड़का बड़ा होता है कोई पिक्चर देख लेता है, पिक्चर में दिखता है कि वो बड़ी सुंदर, वो होते नहीं है सुंदर वो लोग, लेकिन वो पिक्चर में दिखाया जाता है उनको, मार उनके मुंह पर पूरा मेकअप करके इतनी लाइट डालकर वो बड़ी सुंदर लगने लगते हैं वो लोग, और फिर वो देखता है कि यही जीवन है, देखो पूरा 3 घंटा हीरो लड़ रहा है मर रहा है केवल एक लड़की को पाने के लिए, वो लड़ मर रहा है लड़की के लिए नहीं, वो तो पैसे के लिए, उसको पैसा मिलने वाला है, अगर लड़ेगा नहीं ये सब दिखाएगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो हम सोचते कितना उसके लिए, तो मैं भी कुछ करूं। तो ये सारी प्रभाव के कारण व्यक्ति को सुंदर रूप को देखता है, सोचता है बस जीवन यही है, विवाह हो गया इससे तो जीवन सफल है, ये सब अज्ञान है मोह है। सब जानते हैं जिन्होंने विवाह किया है कि कोई कुछ ऐसा होता नहीं, कोई अचानक जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आ जाता, अचानक हृदय में कृष्ण प्रकट नहीं हो जाते भक्ति विवाह कर लेने से, काम वासनाएं प्रभावित करती, इसीलिए इन काम वासनाओं को वश में करना बहुत आवश्यक है। और भक्ति के जीवन में काम वासनाएं कैसे वश में आ सकती हैं, सबसे पहला मार्ग श्रद्धा को बढ़ाना। जितना हम श्रद्धा को बढ़ाएंगे, भगवान में श्रद्धा नहीं है हमें, हम तो कहते हैं कि हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन हमें श्रद्धा नहीं है, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कृष्ण पर, श्रद्धा को बढ़ाना। दूसरा मार्ग ऐसे भक्तों के संग में रहना जिन्होंने प्रयास किया है अपनी कामवासना को वश में करने का। इसीलिए युवा अवस्था में बड़ा आवश्यक है ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना। भारत में ये प्रथा है कि व्यक्ति युवक हो जाए तो उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं कि इसकी जल्दी शादी होनी चाहिए, लेकिन ये कोई वैदिक प्रथा नहीं है, ये तो आजकल लोगों ने कर दिया। वैदिक प्रथा क्या है, जैसा ही वो थोड़ा बड़ा हुआ उसको ब्रह्मचारी बनाकर गुरुकुल भेजा जाता था कि वो अपनी काम वासना को वश में करना सीखे। और इसका उदाहरण हम लोग अभी देख चुके हैं थोड़े समय पहले, दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, भेज दिया उनको तपस्या करने, तुरंत विवाह नहीं कराया दक्ष ने। उसके बाद जब ब्रह्मचारी वो बन गए नारद मुनि की कृपा से, फिर 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, उनको भी भेजा। ये वैदिक सभ्यता है। तो इसलिए वैदिक सभ्यता ये नहीं है कि जैसे लड़का बड़ा हो बस उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दें, विवाह कर दें, माता पिता कहें हमारा सारा कर्तव्य खत्म, अब इसका भी जीवन बर्बाद हो गया, अब हमारा कर्तव्य खत्म। ये कर्तव्य नहीं है माता पिता का। ये ज्यादातर लोग यही सोचते हैं बस हमारा ये कर्तव्य पूरा हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, प्रभु जी मंदिर में पूरा दिन पड़े रहेंगे। अरे क्यों उसका जीवन खराब कर रहे हैं? वैदिक सभ्यता ये है, उसको ब्रह्मचारी बनाइए, फिर उसको निर्णय लेने दीजिए अगर वो विवाह करना चाहता है, और नहीं करना चाहता बहुत अच्छा है सन्यासी बने। गर्व होना चाहिए माता पिता को अगर उनका पुत्र सन्यासी बनता है। आजकल का कलयुग इतना बढ़ गया है कि लोग शोक करते हैं, झगड़ा करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं अगर उनका बच्चा ब्रह्मचारी बनना चाहता है। गर्व होना चाहिए माता पिता को कि मेरा बच्चा ये बाकी लोगों की तरह भोगों में नहीं पड़ रहा, बाकी लोगों की तरह जीवन खराब नहीं कर रहा, ब्रह्मचारी सन्यासी बन रहा है। गर्व होना चाहिए, उनको गर्व से सबको कहना चाहिए। लेकिन आजकल के माता पिता कहते हैं जो बच्चा ब्रह्मचारी बनना चाहता है अरे हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने आश्चर्य की बात है, अरे समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, आपका तो सारे समाज में गुणगान होना चाहिए कि आपने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्रह्मचारी और सन्यासी बन रहा है। समाज में आप उस दिन मुंह दिखा सकते हो जिस दिन उसका विवाह करते हो, बहुत सारे लोगों को बुलाते हो, गिफ्ट लेते हो, गिफ्ट देते हो, उस समय बड़ी अच्छी तरह अपना मुख दिखाते हो। उस दिन मुख छुपाना चाहिए अपने पिता को जिस दिन वो विवाह करता है संतान की, लड़के की, कि हाय हाय मैंने इसका जीवन खराब कर दिया, मुंह छुपा कर बैठना चाहिए उस दिन। और उस दिन तो आप मुंह दिखाते हो, और जिस दिन वो ब्रह्मचारी बन रहा है उस दिन आप कहते हो मुझे मुंह छुपाना पड़ेगा समाज से। ये उल्टी गंगा बह रही है, हिंदी में कहावत है कहते उल्टी गंगा बहना, मतलब गंगा जैसे ना उल्टी बह रही है। तो इसीलिए क्षमा चाहते हैं, थोड़े गृहस्थ बैठे हैं उन लोगों को जरा अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं अपने लड़के के विवाह की या जो भी है कह। तो इसलिए श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए उन लोगों के साथ रहना आवश्यक है जिन्होंने काम वासना को वश में करने का प्रयास किया है। तीसरा मार्ग काम वासना को वश में करने का है भगवान का गुणगान। व्यक्ति जितना भगवान के गुणगान में लगेगा स्वाभाविकता उसकी काम वासना उतनी कम होती जाएगी। इसीलिए जो सतत भगवान का गुणगान करें उनके नाम के द्वारा, उनकी कथाओं के द्वारा, वो व्यक्ति काम वासना से दूर रह सकता है। और एक मार्ग है काम वासना से दूर रहने का, गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो कहा जाए वो करना, इससे हम काम वासना से दूर रह सकते हैं, कामेच्छाओं को परास्त कर सकते हैं। तो इसलिए श्रद्धा को बढ़ाना, भक्तों के संग में रहना, भगवान का गुणगान करना, गुरु के आदेशों का कड़ाई से पालन करना, और जो नियम हमें दिए गए हैं भक्ति में उनको बड़ी कड़ाई से पालन करें, कामेच्छाएं पास भी नहीं आएंगी। लेकिन इन सारी चीजों में हम थोड़े कमी रह जाती है, श्रद्धा की कमी है, हम उन भक्तों का संग नहीं कर पाते, या फिर गुरु के आदेश का पालन नहीं होता, नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये कामेच्छाएं इस तरह से समाप्त हो सकती हैं। तो आगे कई अवतारों से ऐसी एक एक अवतार की चर्चा आज सब तो नहीं कर पाएंगे, तो कई अवतारों से कि धन्वंतरी से भी प्रार्थना की गई है। धन्वंतरी से प्रार्थना की है कि हमें बचाइए ऐसे भोजन से जो हमें नहीं खाना चाहिए और साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा रखे हमारा, तो ये धन्वंतरी से प्रार्थना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि हमें ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए सही नहीं है, अर्थात जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया उस भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बड़ा सरल है, क्योंकि वो सब पाप है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिना संत मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। केवल अपने लिए खाते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते, पाप खा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग अवतारों से वर्णन किया गया है कि कैसे वो बचाएं। व्यास देव से वर्णन किया गया, बुद्ध देव से प्रार्थना की गई है, व्यास देव से कहा गया कि आप अपने ज्ञान के द्वारा हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान व्यास देव शास्त्रों के द्वारा प्रकट करते हैं। बुद्ध से, भगवान बुद्ध से प्रार्थना की गई है कि हमें बचाइए कि हम शास्त्रों का गलत उपयोग नहीं करें, क्योंकि जब भगवान बुद्ध आए थे तो उन्होंने देखा कि ये शास्त्र के आधार पर हिंसा कर रहे हैं, शास्त्र का गलत उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा शास्त्र मत मानो। उन्होंने ये इसलिए नहीं कहा कि वो शास्त्रों को पालन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने देखा कि लोग शास्त्र के नाम पर गलत कार्य कर रहे हैं, शास्त्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आदेश दिया शास्त्र नहीं मानो, मैं जो कहता हूं वो करो, अहिंसा परमो धर्म। तो इस दृष्टि से ऐसे अलग अलग अवतारों का वर्णन हुआ। फिर प्रार्थनाएं की गई कि भगवान के अलग अलग रूप, केशव दामोदर इत्यादि हमारे दिन के अलग अलग समय में हमारी रक्षा करें, ये सब नारायण कवच के मंत्र हैं। तो फिर उनसे प्रार्थना की गई कि वो हमारी रक्षा करें। फिर भगवान के आयुधों से, चक्र से, गदा से इत्यादि प्रार्थना की गई कि वो हमारी रक्षा करें। तो ऐसे ये नारायण कवच आगे बढ़ता गया और ये पूरा कवच फिर जब हो गया तो इंद्र को उन्होंने कहा विश्वरूप ने कि ये कवच आप धारण करें। तो जैसे हम बता रहे थे कि भक्तों को भी ये कवच धारण करना चाहिए, अर्थात हमें जो मंत्र दिया गया है उसको बड़ी गंभीरता से हमें रोज नियम से पालन करना चाहिए ताकि हम लोग भी सुरक्षित रह सकें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको धारण करो, और उन्होंने ये इतिहास भी दिया कि मानो इंद्र के मन में प्रश्न आया हो कि ये नारायण कवच कुछ प्रभावी है, पहले कुछ हुआ हो। तो उन्होंने बताया कि कौशिका नाम का एक ब्राह्मण था जिसने इस नारायण कवच को धारण किया था, और उसके द्वारा इतनी उसके अंदर शक्ति आ गई, वो सर्व रूप से रक्षित हो गया, और फिर उसने योग विद्या से अपने देह को त्याग दिया। जिस स्थान पर उसने अपने देह को त्यागा था, गंधर्वों के राजा चित्ररथ एक दिन उस स्थान पर से ऊपर से जा रहे थे, लेकिन उसका प्रभाव इतना था कि जैसे ही उनका विमान ऊपर से निकला और चित्ररथ अपने विमान से नीचे गिर गए। उन्होंने फिर विमान में चढ़ने का प्रयास किया, चढ़ नहीं पाए, तो बड़ा आश्चर्य हुआ चित्ररथ को कि अरे ये क्या हुआ, विमान से मैं कैसे नीचे गिर गया। तो फिर वहां उपस्थित जो साधु इत्यादि थे उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर ब्राह्मण था कौशिका, इसकी हड्डियां अभी भी यही हैं, तो इनकी हड्डियों को आप पहले सरस्वती नदी में विसर्जित कीजिए, उसके बाद ये आपको जो श्राप है ये मुक्त होंगे, क्योंकि आपने उनके ऊपर से आप गए इसीलिए तुरंत। तो नारायण कवच पहनने के बाद, मरने के बाद भी इतना प्रभाव था, ये बता रहे हैं विश्वरूप। तो फिर उन्होंने उन हड्डियों को प्रवाहित किया सरस्वती नदी में, और फिर वो उस चीज से मुक्त हो गए। तो ये बताया उन्होंने छोटा सा इतिहास इस कारण से कि कितना प्रभाव है इस नारायण कवच का। और फिर उन्होंने उनको कहा कि आप इसको धारण कीजिए, हर प्रकार के भय से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इंद्र ने फिर उसको धारण किया और फिर सारे देव असुरों को वो जीत सके। और ऐसे बताते हैं कि ये जो नारायण कवच अगर जो गाता है या सुनता है, सुनाता है, तो वो ये पूरे जो मंत्र है नारायण कवच, हम लोगों ने पूरे मंत्र तो नहीं कहे, तो पूरे मंत्र जो ये कहता है वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। तो अगर किसी को भय है तो ये कवच उनको धारण करना चाहिए। तो ऐसे कहकर उन्होंने फिर इस अध्याय के अंत में ऐसा कहा, और अगले अध्याय में फिर वर्णन आएगा कि अब ये तो हो गया नारायण कवच तो विश्वरूप, लेकिन प्रश्न था कि आगे क्या हुआ, तो फिर आगे कैसे विश्वरूप की भी हत्या कर दी इंद्र ने, अपने ही गुरु की, जिनको गुरु स्वीकारा था हाथ जोड़कर कि हमें गुरु बनिए, उनकी हत्या कर दी। तो क्यों की हत्या और उस हत्या के बदले में फिर क्या क्या हुआ, ये अगले अध्याय में हम लोग वर्णन सुनेंगे, जिसमें वृत्रासुर का प्राकट्य होगा, वृत्रासुर की कथा और आगे बढ़ेगी, और बहुत से संदेश हम लोग इनमें से लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? हाँ जी, शास्त्र और वेद क्या होते हैं? हाँ, जब हम शास्त्र शब्द कहते हैं तो सारे वैदिक जितने भी साहित्य हैं उनको एक शब्द से संबोधित किया जाता है। जैसे पुराण हैं, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ये पुराण हैं, उपनिषद हैं, कठोपनिषद इत्यादि, या फिर इतिहास हैं, या फिर संहिताएं हैं जैसे ब्रह्म संहिता इत्यादि, इन सब को मिलाकर हम एक शब्द में कहते हैं शास्त्र, उसको शास्त्र कहा जाता है। और वेद, वेद वैसे शास्त्र के लिए भी आता है, जैसे हम लोग कहते हैं वेदों में कहा गया, लेकिन प्रमुखता जब वेद शब्द इस्तेमाल करते हैं तो चार वेदों के लिए आता है, उसमें पुराण उपनिषद इत्यादि नहीं, चार वेदों के लिए वेद कहे गए हैं। तो ये चार वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि, तो उसके लिए वेद शब्द इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य समाज के लिए ये मार्गदर्शिका है, मार्गदर्शिका समझते हैं आप, मैनुअल। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो आपको एक मैनुअल दिया जाता है कि इसको ऐसे चलाओगे तो ठीक रहेगा, इसी तरह ये मनुष्य शरीर के लिए मैनुअल दी गई है वेद। तो पहले एक ही वेद था, फिर व्यासदेव ने उसको चार वेदों में बना दिया, और फिर उनको समझाने के लिए उपनिषद, उसी ज्ञान को समझाने के लिए पुराण, संहिताएं, इतिहास, काव्य, ये सब भाग हैं शास्त्र का, तो उसको शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र शब्द संस्कृत की शस धातु से आता है, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो एक रूट वर्ड धातु से आते हैं, तो शस धातु से शस्त्र भी आता है और शास्त्र भी आता है और शासन भी आता है। तो शस धातु से आता है इसलिए इसका अर्थ ये है कि शस्त्र होते हैं, शास्त्र होते हैं शासन करने के लिए। तो जब शासन करे जाता है तो दो चीज़ों से किया जाता है, जैसे भारत में जो सरकार शासन करती है वो दो चीज़ों से करती है, एक शास्त्र अर्थात संविधान, और दूसरा शस्त्र अर्थात सेनाएं। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं मानता तो उसके लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। तो जिस तरह अगर कोई संविधान का पालन नहीं करता तो फिर उसको दंड देना पड़ता है। तो इसी तरह मनुष्य जीवन में शास्त्र ये जीवन को चलाने के लिए संविधान है, अगर कोई उसको नहीं मानता तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है, फिर दंड होता है। तो इसीलिए उसको शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में ठीक से चलने के लिए जो एक संविधान है उसको शास्त्र कहा गया। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी, विश्वरूप का, विश्वरूप कौन है? ओके, विश्वरूप एक प्रजापति है त्वष्टा, जैसे हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे पिछले जिले की, कई प्रजापतियों का विवाह दक्ष की पुत्री से हुआ, अलग अलग प्रजापतियों से, तो उनमें से एक प्रजापति हैं त्वष्टा, और त्वष्टा का विवाह एक दानव की पुत्री रचना से हुआ था, और उस दानव पुत्री रचना से विश्वरूप का जन्म हुआ था। तो विश्वरूप के पिता की तरफ से वो देवता होते हैं, क्योंकि प्रजापति के पुत्र हैं, जैसे अन्य प्रजापति हैं, कश्यप हैं इत्यादि, तो उनके जो पुत्र हैं वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, तो पिता की तरफ से वो देवताओं की तरफ हैं। लेकिन माता क्योंकि उनकी दानव की पुत्री हैं, इसीलिए वो असुरों की तरफ भी आते हैं। तो ऐसे उनका प्राकट्य है विश्वरूप का, कि वो त्वष्टा के पुत्र हैं और रचना देवी जो उनकी माता हैं वो दानव पुत्री हैं। तो इसीलिए दोनों से उनका संबंध है, और यही कारण बना उनकी मृत्यु का। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसको। और कोई प्रश्न? ठीक। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।